हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग की कृपा प्राप्त करनी होगी और इसके लिए अपने हृदय से समस्त मलिनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति का परित्याग करके और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों को निकाल कर अपने हृदय और अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं प्रीतं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है जो हम सब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इस परम पवित्र गीत श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के मुखारविंद से निकली है उसके विषय में है यत क्षमताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, कि हम जैसे जैसे सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमें इसका रस और भी इतना ज्यादा मधुर लगने लगता, स्वाद सुस्वाद उससे भी ज्यादा मीठा, उससे भी ज्यादा मीठा। यानी जब कोई भगवान के विषय में या भगवान की कही हुई श्रीमद् भगवद गीता के विषय में सुनता है तो कभी तृप्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है मुझे और सुनना है, और आगे कृष्ण ने क्या कहा, और आगे सुनना है, और सुनना है। यानी जो श्रोता होता है ना उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है, और जो वक्ता होता है उसकी एक इच्छा होती है कि मैं और सुनाऊं, और सुनाऊं भगवान ने क्या क्या कहा। बस ऐसे उनका भी उत्साह बढ़ता रहता है और जो बोलने वाले हैं उनका भी उत्साह, क्योंकि ये इतना आनंद प्राप्त कराने वाला, अत्यंत अनंत आनंद देने वाला ये ग्रंथ है। यत श्रोताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे, इसे सुनकर हर एक पद पर, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक चरण में अनंत आनंद प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के इस पवित्र गीत का अध्ययन करता है तो वो भगवान को अपने पास बुला लेता है। श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ पर पाठ होता है वहीं पर निश्चित रूप से भगवान आकर बैठते हैं, और वहीं पर भक्त, जहाँ भक्त होते हैं भगवान निश्चित रूप से वहीं पर होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम। यत्र गीता मतलब जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता विचारश्च, उसके ऊपर विचार किया जाता है, गीता के शब्दों के ऊपर विचार किया जाता है। पठनम पाठनम श्रुतम, उसका पठन किया जाता है, पाठ किया जाता है या उसको श्रवण किया जाता है। तत्राहम निश्चितम पृथ्वीम, भगवान कहते हैं तत्राहम, अहम जब भगवान कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, भगवान अपने विषय में बात कर रहे होते हैं कि आपको पता है मैं कहाँ होता हूँ। किसी को भगवान अपना एड्रेस बताते हुए कह रहे हैं कि मैं कहाँ होता हूँ, जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का विचार किया जाता है, वहाँ उसका श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है और उसको श्रवण किया जाता है। तत्राहम, फिर यहाँ पर क्योंकि भगवान ने स्टॉप नहीं मारा, बोल दिया तत्राहम, यानी मैं वहाँ होता हूँ। ओके ना, हम मानते होते हो, लेकिन आगे कहते हैं निश्चितम, निश्चित रूप से होता हूँ। फिर ऐसा लगता है कि भगवान तो गौलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, यहाँ संसार में कैसे हो सकते हैं। फिर आगे बोला नहीं नहीं, मैं गौलोक वृंदावन धाम में नहीं रहता हूँ, तत्राहम निश्चितम पृथ्वीम, पृथ्वीम अर्थात यह पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं। भगवान ऐसे क्लियर बता रहे हैं कि पृथ्वी पर जब भी कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण होता है, पाठ होता है, विचार होता है, तत्राहम निश्चितम, निश्चित रूप से बिल्कुल डेफिनेटली मैं वहां पर होता हूँ। और क्या करता हूँ, निवसामी, निवास करता हूँ। कब, पूरी देर, जितनी देर हो रहा होता है या थोड़ी देर आके चले जाते तो भगवान आगे कहते हैं नहीं नहीं चला नहीं जाता हूँ, निवसामी सदैव ही, कंटिन्यूअस, जब तक जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पठन हो रहा होता है, विचार हो रहा होता है, उसका श्रवण हो रहा होता है, तत्राहम निश्चितम पृथ्वीम निवसामी सदैव ही, कंटिन्यूअस वहां पर मैं होता हूँ। जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो रहा होता है, श्रवण हो रहा होता है, वहां पर विचार होता है गीता के श्लोकों के ऊपर। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे बाजू में कहीं ना कहीं भगवान बैठे हुए हैं और अपनी ही गीता का श्रवण कर रहे हैं। तो क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं वहां पर होता हूँ, और वो भी ऐसे ऐसे नहीं, भगवान ने कहा निश्चित, मैं निश्चित रूप से होता हूँ और सदैव होता हूँ जब जब श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया जाता है, पाठ किया। तो कितना सौभाग्य है हमारा कि श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ हमें भगवान का सानिध्य भी प्राप्त होने वाला है, हो रहा है, बल्कि कंटिन्यूस हम, इतनी कृष्ण की कृपा है कि उनके शब्दों के साथ साथ भगवान का साक्षात्कार, भगवान के शब्दों के साथ साथ भगवान का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 1 के टेक्स्ट नंबर 11 को पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं अवस्थिताः भीष्म एवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु अयनेषु मतलब मोर्चो में दुर्योधन क्या बता रहा है कि कल दुर्योधन बताया था कि हमारी सेना के पहले उसने पांडवों की सेना के विषय में बताया, अपनी सेना के विषय में बताया और अभी बता रहे हैं कि क्या हो रहा है मोर्चो में, यानी कि जो इसे बनाया हुआ था ना व्यू मना भी सर्वेशु मतलब सर्वत्र यथा भागम यानी अपने अपने स्थान में अवस्थिता अवस्थित यानी आप सब क्या सारे अपने सेना सेना जितने भी सेना है उसको बोल रहा है कि अपने अपने स्थान में स्थित होकर आपको क्या करना है भीष्म भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु अभिरक्षन्तु का क्या मतलब होता है सहायता करनी चाहिए भवन्तः यानी आप सर्वे यानी सब के सब। अब यहाँ पर भवन्तः सर्व सर्वे क्यों लिखा है क्योंकि पहले जो है ना वो किसके साथ बात कर रहा था अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ बात कर रहा था कि पहले उसने बताया कि कौन कौन है हमारे सेनापतियों हमारी सेना में कौन कौन है पांडवों की सेना में कौन कौन है और भीष्म पितामह के विषय में बताया क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ है तो फिर टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है वो तो ना सब सब पे विजय प्राप्त कर लेगा। जब उसने यहाँ तक कह दिया ना जैसे श्लोक नंबर 10 में बताया कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह भीष्म के द्वारा बलिदान दे सुरक्षित हैं और जहाँ पर भीष्म है वहाँ पर पराजय का सवाल ही पैदा नहीं होता जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा बलिदान संरक्षित होकर भी सीमित है कि वो लिमिटेड है उनकी सेना भी लिमिटेड है उनका सेनापति भी इतना ज्यादा कुशल नहीं है इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो हमारे पास तो भीष्म पितामह है माना गारंटी है हमारे युद्ध जीतने की। लेकिन इतना जब उसने बोल दिया तो इसको ऐसा लगा कि बाकी लोगों ने जो सुना होगा वो क्या बोलेंगे कि बस भीष्म पितामह ही गारंटी है और हम लोग कुछ भी नहीं है हम बस ऐसे फालतू में खड़े हुए हैं क्या माना। अब एक राजा है उसको सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना खाली एक को इम्पोर्टेंस दे दी भाई हाँ ये है ना तो समझो जीत जाएंगे तो फिर हमें बुलाने की जरूरत क्या थी हमें बुलाया है तो हमारी भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए सब सब क्षत्रिय थे चले जाते बोला जब हमारी वैल्यू ही नहीं है भीष्म पितामह युद्ध के लिए काफी है तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी। तो फिर क्योंकि दुर्योधन जो है वो पॉलिटिक्स अब खेल रहा है तो सबको इम्पोर्टेंस देने के लिए बोल रहा है देखो मैं अब आप सबको खेल रहा हूँ ये इसलिए बोला है ना भवन्तः सर्व सर्वे यानी कि भवन्तः यानी आप सर्वे मतलब सबके सब एव ही निश्चय ही यानी कि अब सब लोग को बोल रहा है जितने भी सेना मन उनको बोले अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें यानी कि आप सबको बोल रहे हैं कि देखो भीष्म पितामह तो लड़ाई करेंगे और भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी पहले श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद हम इसके विषय में बात करते हैं। श्लोक पढ़ना सीखिए अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि फिर से अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि एक बार फिर अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक बार लास्ट। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। अतेव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें, उनको पूरी पूरी सहायता। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह को उन सब सेनापतियों की सहायता की क्या आवश्यकता थी, वो तो पर्याप्त है। पहले बोला अपर्याप्तम तदस्नेकम बलम भीष्माभिरक्षितम, वो तो इनकी जो शक्ति थी वो तो असीम थी और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो मर भी नहीं सकते थे, फिर इनको रक्षा की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर दुर्योधन याद करा रहे हैं कि देखो आपको मैंने बताया था ना कि भीष्म पितामह अपने भाई यानी कि उनके सत्यवती के जो दूसरे बेटे थे उनके लिए विचित्रवीर उनके लिए काशी के राजा के यहाँ से तीन कन्याओं का अपहरण करके आए थे। उनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनमें से अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर के साथ शादी कर ली, लेकिन जो अंबा थी उसने क्या कहा कि मैं तो शाल्व राजा से प्रेम करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी है, आपके भाई के साथ शादी नहीं करनी है। तो फिर भीष्म पितामह ने उसे बेच दिया था वापस। फिर जब वो शाल्व राजा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं हारी हुई वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो वापस भीष्म पितामह के पास आए कि आपने मुझे हरण किया है, अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे आप मेरे साथ विवाह करो। भीष्म पितामह ने कहा मैं आपसे आपके साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ, मैं तो आपके साथ शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। आपको पहले बताना चाहिए था ना जब मैं आपको लेकर आया था, आपने उस टाइम पर नहीं बताया, मैंने आपको फिर फ्री छोड़ दिया, अब आप जिधर भी जाना चाहो जाओ। लेकिन उस टाइम पर वो इतना अपना अपमान महसूस कर रही थी कि उसने मुझे हरण भी किया फिर भी मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो फिर इसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, कि चाहे उसके लिए मुझे जन्म पर जन्म भी क्यों ना लेना पड़े इस भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक तो वो प्रेम करती थी ना शाल्व राजा से, लेकिन मेरे प्रेमी ने मुझे ना एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, अब संसार में भी कोई मेरी वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं अपहरण की हुई, अब वस्तु रह गई, मेरे जीवन को इसने बर्बाद कर दिया, मेरे जीवन का कोई अब महत्व नहीं है, सिर्फ एक ही मेरे जीवन की आस है कि मैं किसी न किसी तरह से इस यानी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं। तो इसने बहुत सारे जन्म लिए लेकिन भीष्म पितामह क्यों, कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कैसे मरते। लेकिन अब भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा और भी थी कि वो स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते थे, और अब की ये अंबा जो है वो अब इस दो जब युद्ध हो रही है ना, द्रौपदी का एक दूसरा भाई था शिखंडिनी, अब वो अर्धनारी था, अर्धनारी का मतलब होता है ना पूरा पुरुष था और ना ही पूरी स्त्री थी, वो सेंटर का था, तो उस वो भी लेकिन उसको फिर भी अर्धनारी माना आधा आधी स्त्री था ना, तो भीष्म पितामह तो स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते थे, उनकी प्रतिज्ञा थी। अब दुर्योधन जो है वो अपनी सेना को ये बता रहा है कि वैसे तो शिखंडिनी, उनका नाम शिखंडी था लेकिन क्योंकि लड़की भी थी वो साथ में इसलिए उनको शिखंडिनी बोला जाता था, कि वैसे तो शिखंडिनी जो है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा है ना हम सबको हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन क्योंकि वो स्त्री है, और आपको बताऊं वो शिखंडिनी द्रौपदी की भाई थी, तो फिर पांडवों की तरफ से है ना लड़ रही थी, तो है ना बोला कि ऐसा ना हो कि वो भीष्म पितामह के सामने आ जाए, क्योंकि जब वो भीष्म पितामह के सामने आ जाएगी फिर क्या होगा, भीष्म पितामह उसी टाइम पर हथियार रख देंगे, और जब भीष्म पितामह हथियार रख देंगे तो सारी दूसरी जो पांडवों की सेना है वो उनको पकड़ लेगी ना, उनको हिरासत में ले लेगी, उनको बंदी बना लेगी, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, भीष्म पितामह तो चले जाएंगे हमारी सेना से, उनको बंदी बना लिया गया, तो तुम लोग क्या करो, भीष्म पितामह को सबको मारने दो, वो सबके लिए पूरे होंगे, लेकिन खाली आप सब जहां जहां ऐसे से मोर्चे बनाओ कि उनको ऐसी सुरक्षा दो कि उनके सामने शिखंडनी ना आ सके, यानी कि अगर वो आ गई फिर तो जाहिर सी बात है हम वो भीष्म पितामह अपने हथियार डाल लेंगे, तो इसलिए सबको इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि भीष्म पितामह तो इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तो आप सब की है, क्योंकि आप सब अगर नहीं होगे तो भीष्म पितामह की रक्षा कौन करेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, जैसे पहले वाले श्लोक में शौर्य की प्रशंसा की है ना कि भीष्म पितामह का जो संरक्षण है, भीष्म पितामह का होना ही हमारे लिए विजय की गारंटी है, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं उन्होंने ये सोचा कि बाकी लोग ये ना सोचे कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे, क्या कहा, उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महान योद्धा है, महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो गए। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे, दूसरों को बता रहे थे कि ये तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सेना को सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा के का विशेष ध्यान रखे, सारे साइड से देखें कि कोई पीछे से आकर तो उनके ऊपर आक्रमण तो नहीं करा, जो बूढ़े हैं वो चारों तरफ अपना है ना नहीं देख सकते हैं चारों तरफ कि कौन कहां से आ रहा है, तो सारी ओरों से जितने भी दूसरे साइड से, तो आप सब उनकी रक्षा कीजिएगा, हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्थता का बल इस व्यस्तता का लाभ उठा लें, यानी कि वो व्यस्त हो जाएंगे ना, वो मशरूफ हो जाएंगे, एक साइड पर युद्ध कर रहे और शत्रु क्या करेगा, दूसरे साइड से आकर उस पर आक्रमण करेगा, अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें, यानी कि आप अपने व्यूह इस तरह बनाओ कि भीष्म पितामह को कंप्लीट सुरक्षा प्रदान करो, ऐसा ना हो कि दूसरे लोग आकर पीछे से उनके ऊपर आक्रमण कर रहे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है, और ऐसा भी था क्योंकि भीष्म पितामह जिस साइड पर थे उस साइड पर अगर धर्म होता ना तो जाहिर सी बात है भीष्म पितामह जरूरी जीत जाते, लेकिन क्योंकि अधर्म का साथ दिया ना, अधर्म का साथ पहले संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली पुरुष क्यों ना ले ले, उसका नाश होना ही है, लेकिन वो अधर्मी ये नहीं जानता है कि हमारी शक्ति जो है वो विजय का कारण नहीं बनती, विजय का कारण तो हमारा धर्म बनता है, लेकिन इसीलिए दुर्योधन को क्या विश्वास था कि कौरवों की विजय जो है वो भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है, उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की को असहाय अवस्था में बड़ी सभा में नग्न किया जा रहा था। ये जानते थे, दुर्योधन जानते थे कि वो बहुत बड़ा अपराध था, मैंने जो किया उस टाइम पर बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन हमारे साथ ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी चुप करके देख रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं कहा था। याद रखिए, अपराध करना जितना भयंकर है उतना ही अपराध सहना भयंकर है। यदि आपके अंदर साहस है, यदि आपके अंदर क्षमता है, तो अपराध को कभी मत होने दो अपने सामने, और यदि आपके अंदर साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो एटलीस्ट उस अपराध का साथ ना दो, और अगर आप साथ मतलब विवश हो तो क्या करो, एटलीस्ट उस जगह से चले जाओ जहां पर अपराध हो रहा है, मतलब उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध तोड़ दो जो अपराध कर रहा है, क्योंकि जब वो अपराध कर रहा है और आप उसके साथ हो तो फिर उसके अपराध का एक भाग आपको भुगतना पड़ता है। यही उस दुर्योधन के अपराध का परिणाम था कि भीष्म पितामह को ना युद्ध में यहाँ पर इतनी तकलीफें भोगनी पड़ी, 100 बाणों की शैया पे सोना पड़ा। ये इसीलिए था कि उसने इतना बड़ा अपराध किया था, अपनी कुल वधु को नग्न होते हुए देखा, मतलब उस जगह पे बैठे हुए थे, और जब तक इनके शरीर में तीर लगे थे जब तक उनके लहू की आखिरी बूंद ना खत्म हो जाए, क्योंकि वो इस शरीर में जब तक वो इन रगों में जब तक वो ब्लड है जिससे उसने इतना बड़ा अन्याय सहन किया था, उस ब्लड की एक बूंद भी उसके शरीर में जब तक रहती तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वो इतने 18 दिन तक जो है ना वो इस तरह से लेटे रहे, 9 दिन तक तो युद्ध, 9 दिन तक तो वो भी युद्ध करते रहे, बाकी के 9 दिन टोटल 18 दिन युद्ध हुआ था ना, बाकी के 9 दिन तक आप खाली हम खाली इमेजिन करें कि अगर एक सुई हमारी फिंगर में लगी हो, आर पार हो, एक एक साइड से लगी हो और दूसरी साइड से निकली हो, उसको हम 9 सेकंड भी बर्दाश्त कर सकें वरना बिल्कुल भी नहीं, कैसे भी करके। ऐसा कभी कभी एक हमारी एक जाने वाली थी, वो सिलाई कर रही थी तो उनकी फिंगर के अंदर है ना सुई लग गई थी, तो मतलब इतना वो कष्टदायक होता है। लेकिन भीष्म पितामह के शरीर पर 9 दिन तक पूरे शरीर पर 100 बाण लगे थे और वो इस पीड़ा के साथ मतलब रहना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो ब्लड जब तक उनके रगों से खत्म ना हो जाए तब तक वो चाहते नहीं थे कि मेरी मृत्यु हो। तो मैंने ये जो था वो उस अधर्म का साथ देने के परिणाम था कि उन्हें इतना कष्ट मिल रहा था। और जब उसने उनसे न्याय की मांग की थी, यानी जब द्रौपदी ने न्याय की मांग की थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्योत कीरा के अवसर पर किया था। उनको पता था कि एक अपराध में मेरा साथ दिया है, अब आज भी अभी भी मेरा साथ दें, क्योंकि भीष्म पितामह बेचारे तो विवश थे ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कौरवों का साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो, उनकी ये ब्लाइंड प्रतिज्ञा थी, मतलब अंधी प्रतिज्ञा थी। उनको ऐसा बोलना चाहिए था कि जो धर्म जहाँ धर्म होगा वहां पर मैं होऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जहाँ पर कौरव जो भी कौरव के साइड पे भले जो भी युद्ध करेगा या कौरवों के साथ में कौरव सिंहासन हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी बैठेगा चाहे वो कितना ही अधर्मी दुर्योधन जैसा क्यों ना हो मैं उसका साथ दूंगा। तो फिर उनको साथ देना पड़ेगा और फिर दुर्योधन को यकीन था कि वो उसका साथ जरूर देंगे। अब नेक्स्ट लेट पढ़ते हैं, चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 12। तस्य संजन नयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दत् मौ प्रतापवान्। तस्य संजन नयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दत् मौ प्रतापवान्। तस्य संजन नयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दत् प्रतापवान्। लास्ट तस्य दन्दनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दध्म प्रतापवान्। तस्य मतलब उसका, संजनयन यानी बढ़ाते हुए, हर्षम यानी किसका हर्ष, किसका हर्ष बढ़ाते हुए, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध, वृद्ध माना बहुत बूढ़े, भीष्म पितामह, पितामह यानी पितामह या दादा या बाबा, सिंह नादम, सिंह कहते हैं शेर को और नादन मतलब गर्जना, शेर की तरह गरजते हुए, विनद्य गरज कर, उच्च यानी उच्च स्वर से, उच्च स्वर से बहुत ही शोर जोर से, सिंह की तरह शेर की तरह गरजते हुए धार कर क्या किया, शंखम, शंख धद्माओ मना बजाया, प्रतापवान यानी बलशाली, बहुत ही जोर से शेर की आवाज में धार कर अपना शंख बजाया। अनुवाद, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करके, सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है कि पहले तो दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, फिर सारी सेनाओं से बात की और फिर उनको बोला कि आप सब क्या करना, भीष्म पितामह की रक्षा करना, भीष्म पितामह बहुत बार भीष्म पितामह की इससे ये समझ में आ रहा है कि वो सब सुन रहे थे, बोल तो वह भले किसी के साथ रहा था लेकिन भीष्म पितामह भी सब सुन रहे थे और उसको ये रियलाइज हो रहा था कि इतना मतलब ये कर रहा है, कूटनीति कर रहा है, तो अब भीष्म पितामह चाह रहे थे कि बस किसी तरह से ये चुप हो जाए, बस अब ज्यादा इसकी बकबक नहीं सुननी है, ये चुप हो जाए। और इसको चुप कराने के लिए भीष्म पितामह ने क्या किया, अब वो बोले जा रहा था और भी शायद उसको बोलना हो, लेकिन भीष्म पितामह ने क्या किया, उसी टाइम पर शेर की तरह धारने वाला, इतनी तेज आवाज करने वाला अपना शंख बजा दिया कि बस अब तुम्हारी बातें बकवास नहीं सुननी है, चुप करके बैठ जाओ, अब युद्ध करने के लिए आए। तो उनकी क्या इच्छा थी, भीष्म पितामह ने कहा भी था कि अब यह युद्ध यदि टल नहीं सकता तो मेरी यह इच्छा है कि ये युद्ध जल्द से जल्द हो और समाप्त हो जाए, क्योंकि अब एक कार्य जब होने ही वाला है तो जल्दी जल्दी हो जाए ना, अब इसकी बातों में क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। इसलिए शंख फौरन से बजा दिया, क्योंकि शंख बजाने के बाद क्या होता है, बस युद्ध स्टार्ट होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर बताएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था कि चलो ठीक है तुम्हें खुश करने के लिए शंख बजा देता हूँ, अब चुप करो जल्दी से युद्ध स्टार्ट कर लो। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। वो इनडायरेक्टली यही बता रहे थे कि तुम भले कितना ही सोचो कि मेरी वजह से तुम्हें युद्ध में जीत मिलेगी, लेकिन युद्ध में जीतने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। लेकिन वो फिर भी बता रहे थे कि ठीक है मुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारा साथ दिया है और मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा साथ, जो भी गुरु हस्तिनापुर का सिंहासन पे बैठेगा उसका मुझे साथ देना पड़ेगा, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये कभी मत सोचना कि हमारी विजय होगी, क्योंकि विजय तो पॉसिबल ही नहीं। तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली वो बता रहे थे कि अब चुप करो, युद्ध करो, हारो, निकलो, यानी कि अब यहाँ पर ज्यादा बातें बातें करने की जरूरत नहीं है। और आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।